नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज बाधित हुई। लोकसभा दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से सदन की कार्यवाही बाधित न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को नए मुद्दे ढूंढने और संसद को बाधित करने की आवश्यकता नहीं है।
विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इस पर विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे ये तो ठीक नहीं है।
राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित रहने के बाद अब जारी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि साइबर धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचार साथी ऐप लाया गया है। श्री सिंधिया ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से कहा कि इस ऐप को कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने मोबाइल फोन से हटा सकता है।
ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मैंडेटरी नहीं है, आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सर्वसम्मति से उनके चुने जाने की घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 2,208 मतदान केंद्रों पर 100% गणना प्रपत्र जमा करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित कुछ प्रखंड विकास अधिकारी बूथ लेवल अधिकारी पर अपने OTP साझा करने का दबाव बना रहे हैं ताकि मृतकों, विस्थापितों और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नाम मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल किए जा सकें। इस बीच आयोग के विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक गुप्ता ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जनता, राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के अंतर्गत एक मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश केजरीवाल के रांची, मुंबई और सूरत स्थित 15 विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। फेमा के तहत झारखंड में निदेशालय की पहली छापेमारी है। केजरीवाल के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर फेमा के तहत इस मामले में जाँच शुरू की गयी थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आक्रामक रुख और करियर बैटल ग्रुप की तत्काल तैनाती से पाकिस्तानी नौसेना को अपने बंदरगाहों तक ही सीमित रहना पड़ा। आज वे वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में श्री त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और ये भारत की प्रतिबद्धता, तत्परता और प्रतिरोधक क्षमता का परिचायक है। चौथा काशी तमिल संगमम आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। चक्रवात देतवा के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 410 हो गई है, जबकि 336 लोग अब भी लापता हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार इस आपदा ने सभी 25 जिलों के 14,60,000 से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय और रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन की घोषणा की है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से पार्टी नेताओं और उनके परिजनों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। अधिकारियों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।